आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। फेडरल सरकार ने नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS में बड़े सुधारों का बचाव किया है, जिनका मकसद इसके तेजी से बढ़ते खर्च को नियंत्रित करना और इस दशक के अंत तक हर साल लगभग 15 अरब डॉलर की बचत करना है। इन बदलावों के तहत सभी प्रतिभागियों को दोबारा समीक्षा में डाला जाएगा, जिस पर दिव्यांगता से जुड़े संगठनों ने चिंता जताई है और इससे कई लोगों की सहायता कम होने की आशंका भी जताई गई है। NDIS मंत्री मार्क बटलर का कहना है कि बचत का मुख्य कारण लोगों को बाहर करना नहीं बल्कि पात्रता को सख्त करना और सहायता को अधिक प्रभावी करना है। सरकार मई में ऐसे कानून लाने की तैयारी में है जिनके तहत अगले 4 वर्षों में NDIS के खर्च में वृद्धि को हर साल 2% तक सीमित किया जा सकता है। नेशनल कैबिनेट पहले ही इस वृद्धि दर को 8% तक लाने पर सहमत हो चुकी है, क्योंकि ये योजना फेडरल बजट पर सबसे बड़े दबावों में से एक बनती जा रही है। इस बीच विपक्ष कोषाध्यक्ष एंगस टेलर ने कहा है कि गठबंधन हाल के अंदरूनी मतभेदों के बाद जनता का भरोसा दोबारा जीतने की कोशिश कर रहा है। ABC के कार्यक्रम इनसाइडर्स में उन्होंने माना कि नेतृत्व से जुड़ी खींचतान और लिबरल नेशनल साझेदारी में तनाव ने मतदाताओं के विश्वास को खंडित किया है। हालांकि उनका ये कहना है कि अब गठबंधन का फोकस इमिग्रेशन, ऊर्जा की कीमतें और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे होंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि तथाकथित टील यानी स्वतंत्र सांसद कई बार संसद में ग्रीन्स के साथ खड़े नजर आते हैं, हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि स्थिति हर विधेयक के अनुसार बदल जाती है। और वन नेशन के नेता पॉलिन हैंसन ने कैनबरा स्थित संसद भवन के बाहर एक एंटी इमिग्रेशन रैली को संबोधित किया। इस रैली में पार्टी ने ऑस्ट्रेलिया में सालाना प्रवासियों की संख्या को घटाकर 1,30,000 तक सीमित करने की मांग की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में नेट ओवरसीज माइग्रेशन 3,00,000 से अधिक रहा था। ये रैली दी ऑस्ट्रेलियन लॉबी ग्रुप द्वारा आयोजित की गई थी, जो बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन और नेट जीरो जलवायु नीतियों का विरोध करता है। पॉलिन हैंसन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए समानता का समर्थन करती हैं। दूसरी ओर विक्टोरिया की सरकार ने बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच राहत देने के लिए वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन फीस पर 20% की छूट देने का ऐलान किया है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण बढ़ते खर्च को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। जून से वाहन मालिक मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए कार रजिस्ट्रेशन पर रिबेट के लिए सर्विस विक्टोरिया ऐप के जरिए आवेदन कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर के दौरान हुई एक गोलीबारी की घटना में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। एक हथियारबंद हमलावर ने सुरक्षा घेरा तोड़कर फायरिंग शुरू करने की कोशिश की। ये घटना उस बॉलरूम के बाहर हुई जहां राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य मेहमान मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये हमला अप्रत्याशित था, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तेजी से कार्यवाही करते हुए स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने यह भी कहा कि ये घटना खूबसूरत थी, क्योंकि इसने वहां मौजूद लोगों को एकजुट कर दिया। इस दौरान एक सीक्रेट सर्विसेज एजेंट के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पुष्टि की है कि संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और वॉशिंगटन फील्ड ऑफिस इस मामले की जांच का नेतृत्व कर रहा है। वहीं चेर्नोबिल परमाणु हादसे के 40 साल बाद उस त्रासदी के बाद हालात संभालने वाले लोग, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता है, आज भी उस अदृश्य दुश्मन यानी रेडिएशन के खिलाफ अपनी खामोश और लगातार चलने वाली लड़ाई को याद करते हैं। 66 वर्षीय ओलेक्जेंडर रैबेका उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि आज के युद्ध में दुश्मन दिखाई देता है, लेकिन उस समय रेडिएशन का ऐसा खतरा था जिसे न देखा जा सकता था, न उससे सीधे लड़ा जा सकता था। रैबेका को 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में हुए एक विस्फोट के बाद मई 86 से अप्रैल 87 के बीच सोवियत सुरक्षा सेवा के साथ तैनात किया गया था। शुरुआत में उन्होंने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया और बाद में व्यवस्था बनाए रखने तथा रेडियो प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम दिया गया। और अंत में खबरें भारत से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश की तेजी से बढ़ती पवन ऊर्जा क्षमता को विकास की नई कहानी बताया। उन्होंने कहा कि देश की विंड पावर क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है और भारत इस क्षेत्र में दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि जो क्षेत्र पहले बंजर माने जाते थे, वे अब ऊर्जा उत्पादन के बड़े केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु के कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, जो भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा का एक अहम मील का पत्थर है। उन्होंने विज्ञान, तकनीक और नागरिक भागीदारी को देश के विकास का अहम आधार बताते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की। दूसरी ओर भोपाल गैस त्रासदी और भारत की कई अन्य बड़ी घटनाओं को अपने कैमरा में कैद करने वाले देश के प्रख्यात छायाकरों यानी फोटोग्राफर्स में एक रघुराय का निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। इसी के साथ 26 अप्रैल 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।